श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय की श्लोक संख्या 8 दिनांक 17 अप्रैल 2015 स्पीकर कमलोचन प्रभु।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामेहं ददाति स्वापदान्तिकं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगिराजे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी जो अध्याय चल रहा है बड़ा सुंदर अध्याय है जिसका शीर्षक है द गोपीज ग्लोरीफाइंग कृष्णास फ्लूट यानी वेणुगीत। श्रीमद् भागवतम में 5 प्रसिद्ध गीत है, उनमें से एक गीत है वेणुगीत। 21वां अध्याय में 10वां स्कंद का उसमें वेणुगीत गाया गया है। सबसे पहला 5 गीतों में सबसे पहला गीत है। और 29वां अध्याय में 10वां स्कंद का आपको प्राप्त होता है प्राणय गीत। और 31वां अध्याय में गोपी गीत, 34वां अध्याय में आपका प्राप्त होता है युगल गीत, और 47वां अध्याय में भ्रमर गीत प्राप्त होता है। यानी ये जो 5 गीत है, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीतम, युगल गीत और भ्रमर गीत, ये 5 भागवत के प्राण माने गए हैं। जिस प्रकार हम जीवित है, किसके लिए जीवित है? प्राणों की वजह से जीवित है। हम सारे कार्य कर पाते हैं प्राणों की उपस्थिति की वजह से। ये प्राणवायुओं की वजह से ही, 5 प्रकार की वायुओं की वजह से ही हमारा जीवन भी चलता है, हमारे सारे कार्यकलाप चलते हैं। तो उसी प्रकार ये 5 गीत जो है, ये श्रीमद् भागवतम के 5 प्राणवायु माने गए हैं। आचार्यों ने कहा कि ये जो 5 गीत इतना प्रसिद्ध है, भले ही भागवत जो है रसमालयम होने पर भी, ये बुरा भागवत को रसमालयम बनाने के पीछे इन 5 गीतों का हाथ है। तो इसलिए सारे भक्त, कभी समय मिले आपके जीवन में, ये 5 गीतों को बड़े प्रेम से गा सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं और उसके जो गहरे अर्थ है उसके अंदर हम स्मरण कर सकते हैं। इसलिए कभी भी हमेशा याद रखना चाहिए कि 5 गीत भागवत में हैं। वैसे अन्य स्कंदों में अनेकों अनेकों प्रार्थना ज़रूर है, लेकिन ये 5 गीतों की प्रामुख्यता अलग अलग रस शास्त्रों में किया गया है। वैसे ये 5 गीतों में भी जैसे गोपियाँ गाती हैं, इनमें जो अर्थ है वो एक होता है शब्दार्थ होता है, दूसरा अर्थ होता है भावार्थ होता है, तीसरा अर्थ होता है व्यंजनावृत्ति। व्यंजनावृत्ति का अर्थ है जिस अर्थ को इसको प्रकाशित किया जा रहा है। वैसे एक एक शब्द का लेंगे अनेकों अनेक अर्थ हो सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने और हमारे गोस्वामियों ने इन गीतों के ऊपर बड़ा विस्तृत व्याख्या भी किया है और अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इस गीतों की भाव को वर्णन किया है। तो ये जो वेणु गीत जो हैं, ये पांचों गीतों में से सबसे पहला गीत है। यानी अभी गोपियाँ और कृष्ण, इन दोनों के बीच में अभी संवाद पूरा तरीके से सीधे सीधे नहीं हुआ है। देखा जाए कुछ दिनों हमने कालिया का लीला चर्चा किया, देनुकासुर का लीला चर्चा किया, इन सारी लीलाओं में खास करके जो ब्रह्म विमोहन लीला है, ये सब लीलाओं तक कृष्ण का साक्ष्य रस का लीलाओं का वर्णन है और धीरे धीरे माधुर्य रस का लीलाओं का वर्णन भागवत में शुरू होना हो प्रारंभ हुआ। अभी गोपियाँ के हृदय में कृष्ण के प्रति पूर्व राग की विचार है। ये पूर्व राग, वो उसका परिभाषा एक बार आपको सुनाया था मैं क्लास में, कि वो जो प्रेम प्रकट हुआ है गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति, और कृष्ण का भी गोपियों के प्रति है, लेकिन वो खुलेआम सबके सामने व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनको डर है। अपनी माता पिता से डर है, अपने भाइयों से डर है, अपनी पतियों से डर है, तो इस समाज से डर होने की वजह से वो खुलेआम सबके सामने कृष्ण से मिलना वो संभव नहीं है। अभी आप जानते हो इसके जो बाद वाला जो गीत है, प्रणय गीत है, वो रास पंचाध्याय का पहला अध्याय है। उसमें अभी कृष्ण ने बांसुरी बजाया था, वेणु बजाए थे, लेकिन उस समय गोपियों ने क्या किया, सीधा अपने माता पिता का बात नहीं सुनते हुए सीधा भागे कृष्ण से मिलने के लिए। कृष्ण से मिलने के बाद कृष्ण ने कहा, अभी आप इधर क्यों आए हो? तब कृष्ण ने बहुत सारे बातों को कहा, नहीं आप चले जाओ, ये ठीक नहीं रहना। तब गोपियाँ फिर वापस कृष्ण से प्रार्थना करती है, उसको प्रणय गीत कहा जाता है। कृष्ण के प्रति उनके प्रति कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है उसको व्यक्त करने वाला जो गीत है उसको प्रणय गीत कहा गया है। 29वां अध्याय में प्राप्त होता है। तो ये जो गीत है, अभी कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण ने बांसुरी बजाया, हाँ बजाने के बाद भी तो गोपियाँ उस बांसुरी सुन के सीधा कृष्ण से मिलने की उत्कंठता हुई, लेकिन अभी वो मिलने के लिए नहीं गए, हाँ मिल नहीं पाए। तो इसलिए ये एक प्रेम का एक स्टेप पहले, इसको पूर्व राग कहा गया है। पूर्व राग के अनेकों श्लोकों में ये वेणु गीत जो है बड़ा प्रसिद्ध माना गया है। तो वेणु गीत में कृष्ण से मिलने की तीव्र उत्कंठा है और मिल नहीं सकते, ये बड़ा विचित्र परिस्थिति है। हाँ गोपियों के हृदय में इस प्रकार की विचित्र अनुभूति हो रहा है। तो ये विचित्र अनुभूति से गाया गया ये जो गीत है, इसको वेणु गीत कहा गया है। तो इसलिए वेणु गीत का शुरुआत में एक बड़ा परिचय देते हुए एक श्लोक सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा तीसरे श्लोक में, तदव्रज स्त्रिया श्रुत्या वेणुगीतम समो स्मरोदयन क्वचित प्रोक्षयन कृष्णस्य स्वसखिभ्यो अनुवर्तयन। और जैसे कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ, बलराम जी अन्य ग्वाल बालों के साथ वेणु बजाते जा रहे हैं, ये जैसे ये आवाज सुने तद्वर्णयितुम आरभ्या। और जैसे कृष्ण के आए ग्वाल गीत को सुनने लगे तो सारे गोपियाँ इकट्ठा हो गई, और क्या होने कि उनका क्या हो गया, संस्मृत्य कृष्ण चेष्टितम। कृष्ण की चेष्टिता, उनकी लीलाओं को स्मरण करते करने मात्र से क्या होगा, नास्कृतम स्मरवेगम विक्षिप्त मनसो नृपा। उनका मन विचलित हो गया, कुछ गोपियाँ बेहोश हो गई, कुछ गोपियाँ मदमत हो गई, पागल हो गई। और उसके बाद तुरंत सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का रूप का वर्णन करते हैं, कृष्ण का मधुरिमा का वर्णन करते हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, बरहा पेड़म नटवर पपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्वा सकनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम। चंद्राम वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैर् वृंदारण्यं सपादरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। तो ये श्लोक में किस प्रकार कृष्ण का रूप वैजयंती माला को धारण किए हैं, किस प्रकार वो नृत्य करते हुए वो जा रहे हैं, उन सब का वर्णन करते हैं। करने के बाद इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। पहली बार जब वेणु का आवाज सुने सारे गोपियां बेहोश हो गई। अभी कृष्ण आगे निकल पड़े, यानी जंगल में चले गए। ये चले गए मतलब अंदर तक नहीं, एकदम थोड़ा सा गहरे तक जंगल के थोड़ी सी अंदर गए। फिर भी बांसुरी का आवाज सुनाई पड़ रहा है। फिर वही बांसुरी का आवाज सुनने के बाद इति वेणुरवम राजन, हे राजन, हे परीक्षित, वेणुरवम, वेणु का जो आवाज सुनने के बाद सर्वभूत मनोहरम, सारे लोगों का मन को हरने वाला अगर ये वेणु गीत है। अब देखिए गोपियों का मन को क्या करता होगा वेणु गीत। श्रुत्वा वजस्त्रिय सर्वाः, सारे जितने व्रज की गोपियां हैं श्रुत्वा सुनने के बाद वर्णयन्तो भिरे भिरे, वर्णन करना शुरू किया, यानी वापस होश से निकल गए। यानी जो वेणुगीत उनको बेहोश कर दिया वही वेणुगीत के द्वारा वापस उनको होश आया। तो ये इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोरहम, हे राजा, हे परीक्षित, ये वेणुगीत का सुनने मात्र से वापस वो होश में आए। होश में आके एक दूसरे से बात कर रहे हैं गोपियां। सबसे पहला एक गोपी कहती हैं चलो चलो हम मिलने जाएंगे। तो नहीं, गोपी ने कहा नहीं नहीं कैसे मिल सकते हैं, हमारे माता पिता हमारे पर नाराज हो जाएंगे। हाँ, चाके उनसे मिलना हो तो मुझे शर्म लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो अनेकों बातें एक दूसरे गोपियों से कह रही है। ये गोपी ने कहा चिंता मत करो, हम फिर भी जाना है, इतना सुंदर दृश्य है, हम इसके बिना कैसे जी सकते हैं। हाँ, वैसे कोई गोपी ने कहा वापस तो आएंगे ना, तब देख लेंगे। नहीं, तब तक कौन इंतजार करेगा। इस प्रकार बात करते हुए सबसे पहला गोपी गीत का कहा अक्षणत्वाम फलम इदम्, हमारी आंख है उसका कोई कुछ फायदा है तो कृष्ण का दर्शन करना है उसका एकमात्र फायदा है, तो तब तक हम इंतजार करते रहेंगे कृष्ण का, चलो अभी जाके देखेंगे। ना परम विद्मह, ना परम विद्मह, गोपी कहती है कि इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है हमारी आंखों के लिए देखने, हमारी आंखों के लिए दृश्य अगर कोई चीज अगर वस्तु अगर कुछ है वो है कृष्ण। इसलिए सक्य पशु, चलो चलो जल्दी जाके हम देखेंगे। अरे एक दूसरे से बात करें, जा नहीं रहे। तो ने कहा किसको देखेंगे, वक्त्रम रजेश सुतयोर अनुवेण जुष्टम, ने कहा अंदर चले गए होंगे, तुम चिंता मत करो, जहां जहां बारूसी का आवाज आ रहा है ना उसको आवाज के अनुसार हम पीछे पीछे जाएंगे। तब उधर वक्त्रम व्रजेश सुतयोः, तो इधर वक्त्रम व्रजेश सुतयोर, इसके ऊपर एक बड़ा गुह्य व्याख्या किया गया है कि व्रजेश सुतयोर। तो प्रश्न आता है कि इधर ये गोपियां जो बात कर रही है, इन गोपियों के बीच में राधा रानी था क्या। तब एक आचार्य ने कहा नहीं, राधा रानी नहीं थी। तो ये सारे गोपियां अपने आप से बात कर रही थी, राधा रानी गायब हो गई थी। कहाँ थी उसका विशेषण करते हुए कहा गया है व्रजेश सुतयोर। ये गोपी ने कहा कि व्रजेश सुतयोर, देखेंगे व्रजेश मतलब व्रज के ईश्वर नंद महाराज, नंद महाराज के पुत्र कौन है, कृष्ण है। सुतयोर शब्द इस्तेमाल किया गया, इसका अर्थ है कि बलराम जी भी है, क्योंकि बलराम जी भी नंद महाराज को पिताई मानते थे। कृष्ण और बलराम को सूचित किया जा सकता है, लेकिन एक शब्द है इधर ये कहा जाता है कि अनविवेशयो विवेशयतोर। तो क्या हुआ, सख्य पशुम, तो बलराम जी जो है अपना सख्य अपने जो सखा है और पशु उनके साथ साथ में आगे आगे निकल पड़े, और कृष्ण उधर अकेले हैं, पीछे है कृष्ण, सारे ग्वाल बाल आगे हैं, सारे बछड़े आगे हैं, सारे गाय आगे हैं, और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ में हैं। असल में कृष्ण और बलराम कभी भी एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कृष्ण को छोड़ के अकेले बलराम जी आगे गए। क्योंकि बलराम जी सर्वज्ञ है, उनको मालूम है। तब व्रजेश सुतयोर, सुतयोर मतलब द्विवचन, इधर इसे सूचित किया जा रहा है। सारे गोपियों ने कहा केवल उधर कृष्ण और बलराम की बात नहीं, ये गोपी कहती है उधर राधारानी भी है, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, वो है तो हम उनके पास भी जा सकते हैं। तो इसलिए व्रजेश, दो व्रजेश है, एक है नंद महाराज भी व्रजेश है और ऋषभानु भी व्रजेश है। तो इसलिए व्रजेश सुतयोर ये शब्द के द्वारा सूचित किया जा रहा है, राधा और कृष्ण साथ में हैं। अन्विषम जुषम यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्षमोक्षम, अनुरक्त कटाक्षमोक्षम। तो एक गोपी ने कहा अच्छा राधारानी के साथ में है तो उन दोनों के प्रेम में साथ साथ में रहेंगे, हमको देखेंगे क्या? तो चिंता मत करो, खाली उनका दृष्टि मात्र काफी है। कटाक्षमोक्षम जो हमारे अंदर हृदय में ताप की अनुभूति हो रहा है, विरह की अनुभूति हो रहा है, खाली उनका कटाक्ष मिलने मात्र से उससे मुक्त हो जाएंगे, चलो चलो करके एक गोपी ने सबको एनकरेज किया। तब और एक गोपी कहती हैं ठीक है हमको कोई भय नहीं है, हमको कोई लज्जा नहीं है, लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे हमारे ऊपर, हमारा मान सम्मान जो है, वो प्रतिष्ठा जो है, वो समस्या है, लोग जो है हमारी प्रतिष्ठा के ऊपर कलंक हो जाएगा, सब लोग बोले लग जाएंगे ये देखो ये जो लड़कियां हैं ये बेशरम है, कहीं जंगल में लड़कों के साथ जाती है तो सब लोग हमको निंदा करने लग जाएंगे। तो तब और एक गोपी कहने लग जाती है कि आप उसका भी चिंता मत करो, क्या करेंगे हम लोग, हम जाएंगे लेकिन सीधा कृष्ण से मिलने नहीं जाएंगे, हम जंगलों में बहुत सारे पेड़ पत्ते इत्यादि हैं, उन पेड़ों के बीच में भी छुप जाएंगे और वो पत्तों के बीच में जो थोड़ा सा वो जगह होता है ना, उधर से हम ये दृश्य देखेंगे, क्योंकि कृष्ण और बलराम को देखे बिना हम रह नहीं सकते, वी के नॉट सी, हाँ हम पता नहीं शाम तक हमारा प्राण रहेगा कि नहीं, चलो चलो करके एनकरेज करते हुए सारे गोपियों को ये एक गोपी कहती है चलो हम पत्तों के बीच में से दृश्य देखेंगे। अभी ये जो गीत है, ये जो दूसरा श्लोक है प्रणय सॉरी वेणु गीत का, आज का जो आठवां श्लोक जो है वो दूसरा गीत है, दूसरा श्लोक है, उसमें ये गोपियाँ कृष्ण को उन पत्तों के बीच में जो छेद है उनमें से दर्शन करते हुए एक गोपी गा रही है, ऐसा कहा जाता है एक एक श्लोक जो है एक एक गोपी ने गाया। तो ये गोपी को ये दृश्य पूरा स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ते और उन्हें सबसे पहला ये शब्द इस्तेमाल किया चूत प्रवाल। तो कृष्ण क्या सुंदरता को वर्णन कर रही है, उन्होंने अलंकार को वर्णन कर रही है। तो कृष्ण क्या चीज को धारण किए हैं, चूत प्रवाल मतलब क्या है, ये जो आम के जो फूल होते हैं उनको कृष्ण कहाँ धारण किए हैं, अपने कान में एक सर में धारण किए। जो ये आम के जो फूल होते हैं बड़ा सुंदर होता है, अभी अभी तो हो गया अप्रैल हो गया, मार्च फरवरी मार्च के समय में आपको ये आम के फूल फस नज़र आते हैं। तो आम का फूल जो है वो अभी गर्मी का मौसम थोड़ा सा आने से पहले वो थोड़ा लाल लाल हो जाता है, लाल सूचित करता है प्रणय को, लाल सूचित करता है प्रेम को, अनुराग को। तो इसलिए सबसे पहला ये गोपी ये जो आम के जो फूल है उसको देख के, उसके अंदर लालपन को देख के वो कह रही है सारे गोपियों को देखो देखो कितना इतना सौभाग्य है, कृष्ण के संपर्क में आके आम के फूलों को भी इतना प्रेम हो गया, वो प्रेम में ये आम के फूल भी एकदम लाल हो गए। बाद में दूसरा नज़र किसके ऊपर गया गोपी का, वो गया कृष्ण के बरहा मतलब उनके मोर पंख के ऊपर। तो मोर पंख के विषय में सारे कृष्ण गोपियाँ विचार कर रही है, सोच रही है, ये कहा कि मोर कम पंख देखो कृष्ण ने कहाँ धारण किया, उन्हें अपने सर के ऊपर धारण किया। तो क्यों धारण किया, ऐसा नहीं कि ये कृष्ण जो है एक ही मोर पंख रोज धारण करते हैं, ये मोर पंख के विषय में एक लीला वो गोपियाँ स्मरण कर रही है। जैसे कृष्ण का शरीर कैसा है, वो नीलाम्बर जैसा, उनके घनश्याम मी नीलम है श्याम। तो मोर ये जो मोर होते हैं वो बादलों के प्रति बड़ा आसक्त होते हैं, जैसे बारिश का मौसम शुरू होता है, बादल आते हैं ना, सारे जितने भी मोर हैं वो बादलों को देख के एकदम बिल्कुल जोर जोर से आवाज़ करने लग जाते हैं आनंद से। और जैसे कृष्ण जंगल में प्रवेश किए, उधर के जितने भी मोर हैं कृष्ण का शरीर को देख के, कृष्ण का शरीर कैसा है, घनश्याम, वो भी बादल के जैसे है, घने बादल के जैसे, वो देख के बड़े आनंदित हो गए। आनंदित हो गए वो नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते क्या हुआ, वो मोर पंख जो है नृत्य करते गए कृष्ण को गिफ्ट में दिया, तो कृष्ण बड़ा उनको बड़ा आनंद आया, देखो कि मोर जो है मेरा शरीर को देख के आनंदित हो रहे, मुझे गिफ्ट दिया करके तुरंत उसको लेके अपने सर के ऊपर लगाए। ये मोर का कितना सौभाग्य, देखो वो उनका जो दिया गया जो गिफ्ट है, जो उपहार है, वो कृष्ण ने अपने सर के ऊपर धारण किया, ऐसा एक गोपी वर्णन कर रही है। तो बाद में दूसरा तीसरा बात आ रहा है, स्तवकोत्पल्लाब्ज आब्जमाला। तो स्तवक मतलब फूल के गुच्छे। फूल जो है दो प्रकार धारण किया जा सकता है, वो एक है माला बना के, दूसरा क्या है उसका फूल का गुच्छा बनाने के, एक पूरा सब फूल लाके एक ही बात बनाएंगे, पूरा बंच, बंच ऑफ फ्लावर्स। तो माला तो गले में डाला जाता है, लेकिन ये जो फूल के जो गुच्छे है वो कान के अंदर डाला जाता है, पूरे डिंदे दोनों कान के बीच रहते इधर। तो सबसे पहला नजर उधर गया, तो ये फूलों का सौभाग्य को वर्णन कर रही, देखो कृष्ण कहाँ धारण किए, ये फूल के गुच्छे जो है वो कृष्ण के कान में है। कहीं भ्रमर जो है वो आके फूल के पास जाती ना, भ्रमर वो फूल से क्या लेती है, मधु को आस्वादन करती है। कहीं अगर भ्रमर आ जाए उनके पास तो कृष्ण क्या करेंगे, हाँ कुछ गोपियों ने भ्रमर को भी देखा उधर, वो फूल के गुच्छों में भ्रमर भी थे। अगर भ्रमर आता है नजदीक में फूल के, भ्रमर के नजदीक में क्या होता है, कान के पास आता है तो भ्रमर काटता है कि नहीं, लेकिन कृष्ण की मधुरिमा इतना है, वो भ्रमर जो है कृष्ण का शरीर से उत्पन्न हुआ जो सुगंध है, वो कृष्ण का जो शरीर का वो मधु है, मधुरिमा है, वो पी के मदहोश हो गए, बेहोश हो गए। जैसे आप देखे होंगे भ्रमर होता है ना, जब मधु को पी लेता है एकदम बिल्कुल टुल्ल होके सो जाता है, बेहोश हो जाता है। अगर मधु को पिया नहीं होता है तो वो घूमता रहता है, बड़े खतरा है उससे। अगर मधु को पी लिया वो एकदम ऐसे बैठा रहता है, जब पिया वो व्यक्ति बैठा रहता है ना, तो कुछ भी करो वो हिलता नहीं है, इसलिए मधु जो उसके अंदर थोड़ा सा नशा रहता है, ज़्यादा पीना नहीं चाहिए उसको। तो ये कृष्ण के शरीर से उत्पन्न मधु को पी के ये सारे भ्रमर बेहोश हो गए। आगे वर्णन आता है कि उनके दो फूलों का वर्णन है, एक है कमल का पुष्प का वर्णन है, उत्पला मतलब कमल के पुष्प है, और अब्ज मतलब लिलीस मतलब कुमुदा, कुमुद पुष्प। तो एक तो कुमुद जो है बहुत छोटा छोटा रहता है और कमल बड़ा रहता है, तो प्रश्न ये है कि दोनों का माला था, नहीं दोनों का माला नहीं था, कमल का जो पुष्प है कृष्ण ने अपने हाथ में लिए थे, हाथ में लेके ऐसे से घुमा रहे थे, तो कमल का पुष्प होता है उसका डंडा रहता है ना, उसको लेके हाथ में घुमा रहे हैं। और तीसरी बात क्या है इसमें, ये पुष्प का सॉरी चौथी बात, सबसे पहला आम का हुआ, दूसरा आम का पुष्प हुआ, दूसरा है मोरपंख हुआ, और तीसरा है स्तवक। स्तवक का मतलब बंच ऑफ फ्लावर्स, अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे जो जो पुष्पों के जो गुच्छे हैं, ये चौथी चीज हुआ। और पांचवा हुआ उनके हाथ में क्या है, कमल के पुष्प है। और लिली कुमुद के जो मालाओं को धारण करते हुए कृष्ण वो आगे आगे बढ़ रहे हैं। परिधान विचित्र वेश, परिधान विचित्र वेश, परिधान परिधान मतलब क्या है, अनुप्रक्त परिधान विचित्र वेश। तो भगवान के जो आभूषण हैं या उनके जो कपड़े हैं वो विचित्र वेश था। अभी ऐसा थोड़ी ना विचित्र वेश धारण करके भगवान जाते, विचित्र वेश मतलब कुछ भी पहन के जाना। यशोदा मैं तो बड़े अच्छी तरीके सजा की जाती है, कृष्ण को सजा के भेजती है, माँ तो बच्चे को अच्छे से सजाती ना, विचित्र वेश क्यों हुआ। तो जैसे कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जंगल में गए, तो ग्वाल बाल क्या करते हैं मालूम है, यशोदा ने जो भी डेकोरेशन किया सब उसको उतारते हैं। मान लो यशोदा ने कुछ हाथ में कुछ चीज बांधा, उनके कटी स्थल में कुछ चीज बांधा, उसको उतारेंगे, उसको उतार के सर में बांध देंगे, सर में बांधने वाला चीज हाथ में बांध देंगे, जो नीचे जो बांधने वाला चीज ऊपर बांध देंगे, वो कुछ ना कुछ विचित्र करेंगे। यानी गोपियां क्या देख रही है, कृष्ण को किस प्रकार ग्वाल बाल विचित्र रूप में सजा रहे हैं उसको ये सारे गोपियां देख रही है। प्रणिधान विचित्र वेशो, विचित्र वेशो, कृष्ण और बलराम को दोनों को मजे से बिछा बिठा के ग्वाल बाल वापस सजाते हैं। ये क्या है, इस प्रकार थोड़ी ना सजाया जाता है तुम, ऐसा करके वो लोग सारे जो सजावट जो है पूरा चेंज कर देते हैं। और सजाने के बाद अभी गोपी देख के वर्णन कर रही है, कृष्ण और बलराम क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, मध्ये विरे चतुरलम पशुपाल गोष्ठम, पशुपाल गोष्ठम, पशुओं को पालने वाले यानी गोप गोप गोपाल ग्वाल बाल उनके गोष्ठाम, मध्य विरेजितुः बड़ा बहुत प्रसिद्ध शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मध्य विरेजितुः का उन सारे ग्वाल बालों के बीच में कृष्ण और बलराम विरेजितुः, विरेजितुः का अर्थ क्या है, केवल शाइनिंग, वो बहुत चमक रहे थे। मध्य विरेजितुः चमकना का अर्थ क्या है, क्यों चमक रहे हैं, वाई आर दे शाइनिंग, क्योंकि वो कृष्ण बलराम है, कृष्ण बलराम से ही सारे ग्वाल बाल प्रकट होते हैं और सारे ग्वाल बाल का नजर जो है कृष्ण बलराम के ऊपर ही रहता है। मान लें कोई ग्वाल बाल आगे भी जा रहे हैं ना, और पीछे पीछे कृष्ण बलराम को देख के ही जाते हैं, और गोपियां इन दृश्य को देख के बड़े आनंदित हो रही है और सोच रही है ग्वाल बाल कितने बड़े, कितने सौभाग्य है उनका कि कृष्ण के साथ साथ में जा रहे हैं, और उनकी दृष्टि केवल बीच में प्रकाशित होने वाले कृष्ण और बलराम के ऊपर ही है। और जैसे जैसे प्रकाश दूर जाता है वो हमारा नज़र जो है उस प्रकाश के ऊपर कम होता जाता है और क्लियरली देख नहीं पाते हैं, ऐसा गोपियां वर्णन करते हुए आगे कहती हैं वो किस प्रकार दिखाई पड़ रहा है। रंगे यथा नटवरो, रंगे नटा रंगे यथा नटवरो, रंगे मतलब स्टेज, स्टेज के ऊपर बहुत सारे डांस करने वाले होते हैं, मान लो कि 15-20 लोग डांस करने वाले हैं, लेकिन जो जो हीरो हीरोइन होते हैं ना, जो बीच में एकदम मेन डांसर होते हैं ना, उनका ड्रेस अलग से रहता है, बाकी सब जो साइड डांस वाले हैं, जो मेन डांसर हैं सबका जो केंद्र है, सबका जो कोई भी ड्रामा बैठा है, कोई पिक्चर देख रहा है, उनका नज़र किसके ऊपर रहता है, वो मेन जो डांस करने वाले हैं उनके ऊपर रहता है, बाकी साइड डांस करने वाले को नज़र रहता नहीं है। तो प्रश्न है साइड डांसर क्यों है, ऐसे लौकिक बात है। तो एक बार एक ऐसा जोक था, तो पिक्चरों में कभी डांस देखोगे ना, वे आप तो देखते नहीं हो, लेकिन पिक्चरों में डांस होता है ना, जो हीरो हीरोइन डांस करते हैं साथ साथ में साइड में डांस करने वाले रहते हैं, वो क्यों रखते हैं, क्योंकि इतने बदसूरत लोगों को रखेंगे उसके बीच में हीरो हीरोइन सुंदर दिखने लग जाएंगे। इन सबके बीच में वो चमकने लगेंगे, इसलिए थोड़ा साइड डांसर्स को रखते, नहीं तो उसको देखने का कोई मन नहीं करता। लेकिन कृष्ण और बलराम सारे जितने भी ग्वाल बालों के बीच में जैसे रंगे यथा नटवरो, नटवरो वरो मतलब जो श्रेष्ठ नटक नाटक करने वाले होते हैं, डांस करने वाले होते हैं, वो उस प्रकार रहते हैं। और जैसे कृष्ण और बलराम जा रहे, कैसा वर्णन है इधर, क्वच गायमानो, क्वच मतलब कभी कभी क्या करते हैं, गायमानो, तो गायमानो इस शब्द का तीन अर्थ है, एक साधारण सा अर्थ है गायमानो, सब लोग साथ में गाते थे, कृष्ण और बलराम भी गाते थे और सब लोग साथ में गाते थे गायमानो, और गान करते करते सभी लोग आनंदित होते थे, कृष्ण अन्य लोगों का गान करते हुए आनंदित होते थे और सारे अन्य ग्वाल बाल कृष्ण को गाते हुए आनंदित होते थे, यानी साथ साथ में गाते थे। तो गायमानो का दूसरा अर्थ ये है कि सारे जितने भी ग्वाल बाल है कृष्ण और बलराम का गुणगान कर रहे हैं, तो ये ग्वाल बालों का गान सुन के मानव बड़े आनंद का अनुभव कर रहे थे, कौन, कृष्ण और बलराम। और गायमानों का तीसरा अर्थ यह है कि जब ग्वाल बालों ने गाना शुरू किया कृष्ण बलराम चुप गाना नहीं आता आप लोगों को, मैं हम गा के दिखाएंगे। तो कृष्ण गाना शुरू किया, कृष्ण गाना शुरू करके सारे ग्वाल बाल कृष्ण की जो गान सुन के बस अचंभित होके हाँ करके बैठे, हाँ मुंह खोल के अचंभित हुए है। तब कृष्ण को मान लगा, क्या मान लगा, देखो मेरे जैसा कोई गाने वाला नहीं है। तो ये गाय मानव का ये तीन अर्थ है। तो वैसे ये जो वेणु गीत है इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर शब्द आते हैं, बड़े बड़े सुंदर व्याख्याएं की गई है। इसलिए सारे भक्तों को यही विनती है, ऐसे मैं सोच रहा था कि ये सारे गोपी गीत के जो श्लोक है उसको कम से कम अभी 20 श्लोक है, यानी 12 दिन का ये चर्चा चलेगी, उस पर रोज़ आप इस श्लोक को गा सकते हैं। तो आप प्रिंट आउट निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि रोज़ जब क्लास शुरू होने से पहले आप सारे ये जो गीत है खास करके सातवां से लेके आखिरी तक, ये जो गोपियों ने जो गाया है या पूरा चैप्टर, ज़्यादा श्लोक नहीं 20 श्लोक है, उसको गाने का आदत ज़रूर डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये जो 5 जो गीत है भागवत का प्राण है, अगर भागवत वैष्णव का प्राण है तो भागवत का प्राण क्या है, ये 5 गीत है, वायु है जिसके द्वारा भागवत चलायमान होता है। वैसे तो भागवत तो कृष्ण है, उसको जीवित क्या कहना, लेकिन ये 5 भागवत के भी प्राण माने गए हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जब भी मिलोगे रोज़ सुबह इसको गाना शुरू करें, अच्छा है सारे, ठीक है, ये ब्रह्म संहिता के बाद या भागवतम क्लास के पहले या कभी स्पीकर को बोल सकते हैं ये गाना गाई कर, ठीक है। हरे कृष्णा, हाँ भी गा सकते, नहीं तो व्यासासन के ऊपर बैठ के भी सब गा सकते हैं क्लास शुरू होने से पहले, वो आप डिसाइड करो, ही डिसाइड्स। हरे कृष्णा मंत्र।